स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या, और इस चौथे अध्याय का ये बहुत ही सुप्रसिद्ध श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता के पांच ये पहलू, जिसमें भगवान के लिए 12 प्रकार से हम अपनी ओर से क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा चल रही है। और हम 12वें मुद्दे पर हैं, हाउ मच डू वी वांट नेम फेम रिकॉग्निशन एंड अटेंशन फॉर आवरसेल्फ्स एंड हाउ मच डू वी वांट ऑल दैट फॉर कृष्णा। तो ये जो हमारे अंदर स्वाभाविक इच्छा है, स्वाभाविक भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से नहीं, तो भौतिक रूप से हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये जो शब्द है प्रतिष्ठा संस्कृत का, फेम अंग्रेजी में जिसको कहेंगे, या शोहरत, तो प्रतिष्ठा का अर्थ है वो वस्तु जो हमें एक जगह पर तिष्ठित कर दे, एक जगह पर हमें टिकाए रखे। और वो एक जगह कौन सी है? ये भौतिक संसार। तो जो प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, अर्थात वो क्या होना चाहते हैं, इस भौतिक संसार में पूर्ण प्रकार से स्थित होना या सेटल होना चाहते हैं, उसका उसका लिटरल मीनिंग है प्रतिष्ठा, परमानेंटली वांटिंग टू बिकम स्टेइंग एट वन प्लेस, सिचुएटेड एट वन प्लेस, वो है प्रतिष्ठा। तो ये जो ईगो अहंकार, हम ये मुद्दे पर हैं कि अहंकार के वजह से हम कैसे रिएक्ट करते हैं, व्हाट इज द इनसाइड कंटेंट, व्हाट इज द आउटसाइड सिचुएशन। हमने आम का उदाहरण लिया, 2 हफ्तों से हम ले रहे हैं कि आम जो है वो अंदर से रसीला है, परंतु अंदर से रस उसके अंदर पैदा करने के लिए बाहर से सूर्य की रोशनी, पानी इत्यादि वो सहायक होते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर का जो कंटेंट है वो कितना जूसी होगा, कितना हम ड्राई होंगे, कितना हम मीठे होंगे, कितना हम खट्टे होंगे, ये सब निर्भर किस पर करता है, हमने हमारे चारों ओर क्या एनवायरमेंट बनाकर रखा है। तो हम इस मुद्दे पर हैं कि हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, हम जानते तक नहीं कि ये जो अहंकार है कभी काम का संगी बनता है, कभी लोभ का संगी बनता है, कभी क्रोध का संगी बनता है, द्वेष इत्यादि इन सब का संगी बनकर हमसे विभिन्न प्रकार के कार्य कराता है। तो रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड, दोनों में अंतर क्या है? इनसाइड कंटेंट व्हेन इज वीकर देन द आउटसाइड एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड बीइंग रिएक्टिव. ऑपोजिट रिस्पॉन्ड मीन्स इनसाइड कंटेंट इज स्ट्रॉन्गर देन द आउटसाइड एनवायरनमेंट. अब हमारे जो वेद हैं, भगवद गीता लीजिए, श्रीमद भागवतम लीजिए, ये इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि इनमें इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें आदेश दिए गए हैं, या उसको थियरी कहो कि क्या हमें करना है, उसका ब्लूप्रिंट, स्क्रिप्ट for our human form of life that's given in our Vedas. और उसके साथ साथ एक environment, जैसे कि भगवान के जो इतने अवतार, ये नासिक धाम को आप लीजिए, भगवान श्री राम यहां पर विचरण किए, ये आप देखोगे कहां कहां पर पांडवों का वितरण यहां वहां पर हुआ, पांडव जो है विचरण किए यहां वहां पर, तो जहां जहां वो विचरण किए वो धाम बनते गए. भगवान श्री राम जहां जहां गए वो धाम बनते गए. नहीं तो नासिक क्या रह जाता, केवल अंगूरों के लिए बस. खैर आज भी वही हो रहा है, रामचंद्र जी को बहुत कम लोग याद करते हैं, ज्यादा अंगूर फेमस हो रहे हैं. तो भगवान के विभिन्न अवतार वो प्रकट होकर एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर क्रिएट कर कर जाते हैं. भगवान के अवतार और भगवान के प्रतिनिधि, जैसे कि श्रील प्रभुपाद. अब देखो श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए और वहां पर उन्होंने न्यू वृंदावन एक फार्म कम्युनिटी शुरू किया, न्यू मायापुर, न्यू जगन्नाथपुरी, न्यू द्वारका. तो ये धाम, इनको प्रभुपाद ने कहा दे आर नॉट डिफरेंट देन वृंदावन, द्वारका, मायापुर, जगन्नाथ. प्रभुपाद डिडंट जस्ट राइट बुक्स, प्रभुपाद डिडंट जस्ट ओपन टेम्पल्स, प्रभुपाद क्रिएटेड होली प्लेसेस एंड होली मेन, अ लाइफस्टाइल, अ कल्चर. तो इंस्ट्रक्शंस जो वैदिक ग्रंथ में हम पढ़ते हैं वो हमारे आंतरिक शक्ति के लिए. तो ठीक है, हमने भगवद गीता का पाठ कर लिया, जैसे कि बुधवार के कार्यक्रम में आप लोग आते हो तो यहां पर भगवद गीता का पाठ होता है, भगवद गीता के ऊपर लेक्चर हो जाता है, आप लोग सुन लेते हो. ये सब क्या हुआ, आंतरिक रूप से आपको एक डोज मिल गया. अब वो जो आंतरिक डोज आपको मिला है, जब तक कि यहां से बाहर जाकर, अब ये जो प्रांगण है मंदिर का, यहां पर तो ये एनवायरनमेंट है, कहीं पर भी जाओ, बाहर जाओ, इस मंदिर के प्रांगण में आपको भगवान श्री कृष्ण या वैदिक पद्धति या वैदिक संस्कृति से संबंधित सब कुछ यहां पर आपको दिखेगा. तो यहां तक ठीक है, जैसे ही इस मंदिर के प्रांगण से आप बाहर जाते हो तो प्रश्न ये है कि अब बाहर का वातावरण क्या वो अनुकूल है वैदिक संस्कृति के अनुसार. तो हमने उदाहरण लिया था कि हम मनुष्यों के अंदर इतनी शक्ति है कि हम मनुष्य अपना वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, है ना. जैसे मनुष्यों ने बुद्धि लगाकर एसी का निर्माण किया, कितनी भी गर्मी बाहर हो एसी ऑन कर दिया, अंदर हम ठंडे, है ना. चाहे कितना भी ठंडा पानी हो, हमने गीजर से उसको गर्म कर लिया. इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि हम हमारे आसपास के वातावरण को बदल सकते हैं. अब प्रश्न यह है कि क्या हम अनुकूल रूप से बदल रहे हैं या प्रतिकूल रूप से बदल रहे हैं, परंतु यह पूरे वातावरण में, पूरे पृथ्वी के वातावरण में या पर्यावरण में जो इतना बदलाव इतने वर्षों से दिख रहा है, किसकी वजह से? हम मनुष्यों की वजह से। आज उसके ऊपर हम गहराई से चर्चा करेंगे कि हमारे वजह से किस प्रकार का बदलाव पर्यावरण में आ रहा है या हम कर रहे हैं, जानते भी हैं परंतु फिर भी लाचार हो गए हैं। सो वी ह्यूमन बीइंग्स वी कैन अडैप्ट, वी कैन चेंज टू बिगिन विथ फर्स्ट आवरसेल्फ्स एंड देन द एनवायरमेंट अराउंड अस। तो इसलिए जो बाहर का वातावरण है वो हमारे बाहरी इंद्रियों को और बाहर से हमको शक्ति प्रदान करता है। अब देखो, हमें दोनों तरफ से शक्ति चाहिए, हमें अंदर से शक्ति चाहिए और हमें बाहर से शक्ति चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने केवल किताबें लिखकर वो वापस भारत नहीं आ गए, उन्होंने कम्युनिटी खड़ी की वहां पर, भक्तों का समुदाय, भक्तों का समाज, और तब जाकर हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ। यहां तक कि ऐसे ऐसे जो यूरोपियन, अमरीकी, अफ्रीकन, चाइनीज, जापानीज, यहां तक कि कई मुसलमान, उनके अंदर ये सब बदलाव, क्योंकि प्रभुपाद ने एक एनवायरमेंट दिया। तो हम काफी कमजोर स्पीशीज हैं जहां तक कि हमारे अंदर का जो बल है, बाहर से भी हम इतने ज्यादा बलशाली नहीं है। हाँ, बुद्धि है, बुद्धि से हम उपकरण यहां वहां इकट्ठा कर लेते हैं, उसका आविष्कार कर लेते हैं जो हमारी सुरक्षा कर सके, परंतु यदि आप प्राकृतिक रूप से देखो तो हम बाहर से बहुत निर्बल हैं और अंदर से भी निर्बल है। इसलिए हमें सपोर्ट चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमने वेद की ये जो दो मुद्दे, अब इसकी हमने पिछले बार चर्चा की थी, ये सारे मुद्दे, सोल विद इन अ बॉडी, बॉडी विद इन अ हाउस, एजुकेशन इन अ स्कूल, फूड इन अ रेस्टोरेंट, स्पिरिचुअलिटी इन अ टेम्पल, जैसे कि ये सब में आप देखो कि एक वातावरण क्रिएट होता है, और जब वातावरण क्रिएट होता है तब जाकर उसमें वो जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी कंप्लीट होती है। स्कूल और एजुकेशन, वो एक जो पूरे स्कूल का प्रिमाइसेस है, वो जो एनवायरमेंट है, वो एक क्रिएट करता है इच्छा या डिसिप्लिन। इच्छा तो बहुत कम होती है आजकल विद्यार्थियों की, कम से कम एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है उनको बैठकर। जैसे यहां पर भी हम, हमारा वेडनेसडे कार्यक्रम, हम एक एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, कैसे आपको बैठना है, कहां बैठना है, किस सलीके से बैठना है, इतने सारे अनाउंसमेंट होते हैं, क्या बंद करो क्या खुला रखो, मोबाइल बंद करो आंखें खुली रखो, फिर भी उल्टा हो जाता है ना, मोबाइल चालू रहते हैं आंखें बंद हो जाती, तो इतने नियम बताने पड़ते हैं। सब ये साउंड सिस्टम चलता रहना चाहिए, इतना बड़ा जनरेटर लगाया हमने, पूरा एनवायरनमेंट बराबर होना चाहिए, तब जाकर वो इफेक्ट आता है। इतना पूरा अरेंजमेंट ये वेडनेसडे प्रोग्राम में, एक बच्चा बीच में रोना लगता है, देखो कितना उसके अंदर शक्ति कितनी है, पूरे एनवायरनमेंट को बच्चा हिला सकता है। सब लोग बच्चे की ओर देखते, सबसे पहले किसका बच्चा है, क्यों रोया, मेरी नींद हराम कर दी। तो एक एनवायरमेंट, उसका इंपॉर्टेंस, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो एक सुंदर उदाहरण हमारे आचार्य देते हैं। वैदिक नॉलेज इज लाइक अ शार्प स्वॉर्ड। श्रीमद् भागवत में भी उदाहरण दिया गया है कि जो वैदिक ज्ञान है, और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, वैदिक ज्ञान जो है वो एक तेज धार वाली तलवार के समान है। तो तेज धार वाली तलवार काटने के काम आती है। तो हमारे जो इतनी ग्रंथियां हैं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग ये दो वर्ड हैं, ग्रंथ और ग्रंथी। ग्रंथी का अर्थ क्या होता है? नॉट। ग्रंथ क्या है? हमारे वैदिक ग्रंथ। तो ग्रंथ जो है वो हमारी ग्रंथी को काटने के लिए है, क्योंकि ये हमारी ग्रंथी इतनी ज्यादा उलझ गई है कि अब इसको सुलझाने बैठें तो कई जन्म बीत जाएंगे हमारे, और हम कई जन्मों से ट्राई वही कर रहे हैं एक एक ग्रंथी उसको सुलझाने। कभी आपने ट्राई किया, कभी एक बहुत ही उलझी हुई कोई रस्सी उसको आप सुलझाने की कोशिश करो, कई बार उसको, हमारे जो ब्राह्मण दीक्षित हैं, कई बार उनका ब्राह्मण थ्रेड अटक जाता है, तो एक निकालने जाओ वो और कहीं पे गांठ लग जाती है, ये फिर उसको काटना ही पड़ता है, दूसरा लाना पड़ता है। तो अगर ग्रंथि जो है बहुत ज्यादा उलझ गई है तो उसको सुलझाना वो एक और वेस्ट ऑफ टाइम है। इसलिए वैदिक ग्रंथ जो है वो ऐसी तलवार, ज्ञान रूपी तलवार। इसलिए प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखी, स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, बुक का टाइटल है द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज। तो वैदिक ज्ञान यदि वो तेज धार वाली तलवार है, तो जो वैदिक एनवायरमेंट है उस ज्ञान को कैसे हम एसिमिलेट करें, कैसे उसे हमारे जीवन में उतारें, उसे पचाएं, बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो मयान है, शीत, सॉफ्ट शीत, अंग्रेजी में जो शब्द है शीत, हिंदी में इसको कहेंगे मयान। हर समय आप देखो तलवार जब उसको इस्तेमाल करना होता है तब जो योद्धा है उस मयान से बाहर निकाल, नहीं तो वो मयान के अंदर वो तलवार रहती। तो इसलिए बहुत सुंदर ये उदाहरण है कि दोनों चाहिए। आप यदि तलवार खरीदने जाओगे, पता नहीं आजकल तलवार मिलती है कि नहीं, परंतु तलवार खरीदने जाओगे तो तलवार के साथ वो व्यक्ति आपको मयान भी देगा, ये भी साथ में रखो, नहीं तो काट लोगे खुद को दूसरों को। उसी प्रकार से वैदिक ज्ञान जो है वो पूरे सपोर्ट सिस्टम्स के साथ भगवान ने दिया है। इसलिए ज्यादातर हम भारत में जो हिंदू हैं, क्यों हमें ये जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं ये दक्यानुसी लगते हैं, ये शब्द नहीं समझा, दक्यानुसी, रिचुअलिस्टिक, ऑर्थोडॉक्स, स्टीरियोटाइप्ड, क्यों दक्यानुसी रखते? क्योंकि हमने कभी कोशिश नहीं की कि इस वैदिक ज्ञान को कैसे हम उसके एनवायरमेंट में अपनाएं और देखें उसको पालन करते हो। तो जब हमारे बड़े बुजुर्ग धीरे धीरे वो वैदिक संस्कृति को छोड़ते गए, परंतु उस इंस्ट्रक्शंस को मॉडर्निस्टिक तरीके से अप्लाई करते गए, तो आजकल की जो जनरेशन है वो उसको कनेक्ट नहीं कर पा रही। इसलिए आजकल की जनरेशन फिर उनके जो बाप दादा हैं उनको कहते हैं कि आप क्या है, पिछड़े हुए सारे रीति रिवाज हमको बताते हो। और फिर इसके बलबूते पर आज की सिविलाइजेशन क्या करती है, आज की सिविलाइजेशन फिर प्रस्तुत करती है पीके जैसी मूवी, कि नहीं, पीके जैसी मूवी प्रस्तुत करती है कि सब रॉन्ग नंबर है, जितना भी है ये जो भी कुछ अध्यात्म के नाम पर चल रहा है वो सब कुछ ढोंग ढकोसला फरेब है। तो फिर पूछा जाए तो फिर राइट नंबर क्या है, तो हमारी पिक्चर वो है राइट नंबर। खैर वो अलग टॉपिक है। तो अब हम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ध्यान से आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए। विशेष रूप से मैं ये प्रेजेंटेशन हम भारतीयों के लिए डिजाइन कर रहा हूं, ताकि हम लोग जो भारतवर्ष में हिंदू परिवार में पैदा हुए, थोड़ी बहुत संस्कृति के साथ पैदा हुए, और यहाँ श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य इस्कॉन के, जिन्होंने न केवल इस शुद्ध वैदिक संस्कृति को पूरे विश्व में लोगों तक पहुंचाया, बल्कि वो सबसे ज्यादा अपेक्षा हम भारतीयों से कर रहे, परंतु दुर्भाग्यवश हो क्या रहा है, जो मैं हर साल ट्रैवल कर रहा हूं देश विदेश, तो जो वहां पर देख रहा हूं, यहां पर देख रहा हूं, जो धीरे धीरे कली का प्रभाव और बदलाव विशेष रूप से हमारी वैदिक संस्कृति को लेकर जो आ रहा है, बहुत दयनीय स्थिति हो रही है धीरे धीरे। तो कम से कम यहां पर जो हम इतनी मेहनत कर इस संस्कृति को फिर से इकट्ठा कर श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि बनकर प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम आप लोग इसे ध्यान से समझिए, और एक बार यदि आपने ध्यान से इसे समझा तो अवश्य ही आप अपने जीवन में अपनाओगे, और जो बाकी प्रॉमिसेस हैं मोक्ष और आध्यात्मिक संसार, वो तो सब खैर मिलना ही है इसको कोई पालन करता है तो, परंतु आजकल स्थिति ऐसी है कि यदि वैदिक संस्कृति का कोई पालन नहीं करेगा तो वो एक शांतिमय जीवन भी नहीं जी पाएगा। तो यदि आप लोगों को शांतिप्रिय जीवन पसंद है, या आप शांतिप्रिय मनुष्य हो, तो भी ये अनिवार्य है इसको पालन करना। और इसके अगेंस्ट मॉडर्न कल्चर क्या दे रहा है, इसकी शुरुआत इस प्रकार से, मॉडर्न कल्चर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्टिंग, whereas वैदिक कल्चर इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटिंग। जो आधुनिक संस्कृति अभी अगर हम कहें, वो संस्कृति नाम भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, परंतु करना पड़ेगा समझने के लिए, तो जो आधुनिक संस्कृति है वो स्पर्धात्मक है, और उसके अंदर हर समय स्पर्धा और प्रतिकूल स्पर्धा। परंतु वैदिक संस्कृति जो है वो सहकारात्मक है, और श्रील प्रभुपाद ने इसके ऊपर वर्णाश्रम धर्म जो है वो सहकारात्मक है, और उसके ऊपर प्रभुपाद ने हमें भक्ति का जो मार्ग दिया है, शुद्ध भक्ति का मार्ग, वो सेवात्मक है। तो प्रभुपाद कहे सबसे पहले हम स्पर्धात्मक को बंद करें, कॉन्फ्लिक्टिंग लाइफस्टाइल, और हम सहकारात्मक जीवन में आए, कॉम्प्लीमेंटिंग लाइफस्टाइल, और फिर वहां से ऊपर उठें सेवात्मक, विच इज ऑन दी शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे महाभारत में। यक्ष ने बहुत से प्रश्न युधिष्ठिर महाराज को पूछे। अब देखिए, ये ऐसे प्रश्न युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने पूछे जो कि प्रैक्टिकल हमारे आज, सोचिए ये प्रश्न पूछे गए थे द्वापर युग में युधिष्ठिर महाराज को, इतने लाखों वर्ष पहले, और यही प्रश्न के उत्तर मैं केवल एक ही प्रश्न लिया हूं प्रश्नावली में इसे, जैसे कि वो प्रसिद्ध प्रश्न है ना यक्ष का युधिष्ठिर महाराज की, सबसे आश्चर्यजनक बात कौन सी है पूरे अलग अलग प्रश्नों में से, ये एक प्रश्न तो प्रभुपाद इसको बहुत कोट किए हैं कि अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति ह यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम, कि हर दिन इतने जीव यम के आलय यमलोक जा रहे हैं, बस लोड ट्रक लोड ट्रेन लोड बोल लो भर भर के यमलोक जा रहे हैं, और वहां पर कोई पार्टियां नहीं हो रही हैं कि इतने वहां पर वो लोग भारी मात्रा में, उनको भारी मात्रा में जाना पड़ रहा है उनके कर्मों के वजह से, अहनी अहनी हर दिन जा रहे हैं, गच्छन्ति जाना यमाल है। तो युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया कि हर दिन इतने बलि चढ़ रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दिए कि बकरे बलि के जो बकरे होते हैं लाइन से उनको खड़ा किया जाता, लाइन से उनको खड़ा किया जाता है, और हर एक बकरे के सामने वो कसाई जो है अच्छी सबसे अच्छी उत्कृष्ट घास रखता है उसे खाने के लिए, और वो जब खाता रहता है तो उसको लगता है कि मुझसे ज्यादा सफल व्यक्ति और कोई नहीं, ऐसे भ्रम में रहता है कि मुझसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति कोई नहीं, कि ऐसा घास कौन से बकरे को मिलेगा। तो वो खाते हुए उस घास को खाते हुए वो जो बाकी बकरे हैं जो उस लाइन में नहीं खड़े किए गए बलि चढ़ने के, वो उनके ऊपर तरस खाता है। तरस किसको किस पर खाना चाहिए, हम राधानाथ महाराज का प्रवचन सुन रहे थे मेरे ख्याल से शायद आज ही, तो वो भी ये उदाहरण दे रहे हैं, सब बकरे लगे हुए हैं और सब वो घास खाते हुए सबको इतना छाती फूल रही है उनकी गर्व से कि हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, देखो ऐसी घास हम लायक हैं इस घास, पता नहीं है कि अभी अगला वो जो कसाई है वो पूरे चिथड़े चिथड़े करने वाला है उस बकरे का। तो शेष स्थावरम जो पीछे बच गए, ये जो बकरे अभी तक उधर तक पहुंचे नहीं है, कसाई के चाकू के नीचे आए नहीं है, वो जो बकरे हैं शेष स्थावरम वो बचे हुए इस श्लोक के अनुसार, वो कहते हैं वो देख भी लेते हैं, वो जो पांचवा पहला वाला बकरा जो गया मैं पांचवा, वो पहला वाला बकरा जो अभी कट रहा है उसको कटा हुआ देख रहे हैं या कटते हुए देख रहे हैं, ये वाला बकरा कहते नहीं नहीं ऐसे थोड़ी वो कसाई मेरे साथ करेगा, नहीं नहीं मुझे कितने प्रेम से वो लाया, कितने प्रेम से उसने बात नहीं मानी होगी उस बकरे ने, इसलिए कुछ होगा दोनों के बीच, नहीं मेरे साथ, इसलिए हम लोग वो कौन से बकरे हैं, न्यूज़पेपर खोलते हैं पढ़ते हैं, अरे बाप नेपाल में इतने मर गए, ऐसे करते कैसे करते टीवी में दिखाते हैं एक्सीडेंट में ये ऐसे मर गया वैसे मर, अरे बाप ब्रावो, और टीवी भी देखते हो घास खाते खाते मेरे साथ मेरी पनीर की सब्जी, जैसे वो बकरा घास खाते खाते वो दूसरे बकरे को देखते, हम भी टीवी कब देखते रबड़ी पनीर खाते खाते, और कई बार अगर थोड़ा भी एहसास किसी को हो जाए तो चैनल भी चेंज कर लेता है, फूड फूड चैनल लगा खाते समय आ जाए अच्छे चैनल लगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने देखो कितने प्रैक्टिकल तरीके से उत्तर दिया कि इससे ज्यादा आश्चर्यजनक बात उन्होंने देखी नहीं। क्या हो सकती इससे ज्यादा आश्चर्यजनक बात? देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसके बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं है। किम आश्चर्य अथ परम, इससे बड़ी आश्चर्यजनक बात क्या हो सकती? अच्छा, ये एक और प्रश्न जो यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को पूछा। व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर अ ह्यूमन बीइंग? सर्वसाधारण मनुष्य के लिए आनंद या सुखी रहना, खुश रहना, कैसे आप उसको परिभाषित करो? युधिष्ठिर महाराज कौन है? धर्मराज है। अब जब मैंने महाभारत में युधिष्ठिर महाराज का ये उत्तर, इस प्रश्न के लिए जो उत्तर उन्होंने दिया, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा उत्तर दिया है कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु गुजर रहे हैं उस दौर से, एज इफ युधिष्ठिर महाराज इज इन 2015 और 2015 में यक्ष ने प्रश्न युधिष्ठिर महाराज को पूछा, ऐसा जवाब सुनकर आपको लगेगा। तैयार हैं आप? इससे समझ में आता है कि युधिष्ठिर महाराज और हमारे जो ये सारे महाजन हैं और इनकी जो शिक्षाएं हैं, ये कितनी प्रैक्टिकल है। इट इज फॉर एवरी डे एंड एज। तो युधिष्ठिर महाराज अपने जवाब में यक्ष को कहते हैं, तीन मुद्दे वो कहते कि तीन मुद्दों से समझ में आ जाएगा कि एक सर्वसाधारण मनुष्य इस भौतिक संसार में सुखी कैसे रह सकता है, या सुखी है या नहीं। ये युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। फर्स्ट रीजन टू बी हैप्पी फॉर अ ह्यूमन बीइंग, इफ वन गेट्स होम कुक्ड फूड एवरी डे। अब आपको क्या लगता है, युधिष्ठिर महाराज के समय कोई ये KFC, मैकडोनल्ड्स ये सब थे क्या? कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, ये सब कोई थे? रोज तो युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी या कुंती इनके हाथ का बना ही खा रहे। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचो, कितने दूरदर्शी युधिष्ठिर महाराज हैं। तो देखिए, फूड कुक्ड एट होम, अभी मेरे ख्याल से मैं अगर टाइम मशीन में जाकर, जब युधिष्ठिर महाराज ये उत्तर दे रहे थे, मैं अगर यक्ष का एक्सप्रेशन देखूं, हाँ, अगर हम लोग जब सब टाइम मशीन में बैठकर उस महाभारत के काल में जाएं और ये जब युधिष्ठिर महाराज ने फर्स्ट रीजन दिया, तो यक्ष के चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन? क्या होम कुक्ड फूड? मतलब वहां पर उस समय तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आज हाँ, हाँ हम लोग ये सही बात, क्या सही बात, बरोबर बरोबर सांगितला। अभी हम लोग बरोबर बरोबर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपना कुछ बरोबर ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं हाल ही में जो 1.5 महीने बाहर था, यूके, यूनाइटेड किंगडम, क्या कहते हैं उसको, यूनाइटेड किंगडम, एक और ट्रांसलेशन उसका है यूके, उग्र कर्म एक डिवोटी मुझे बता रहे थे, यूएसए अनलिमिटेड सिंफुल एक्टिविटीज। तो अब देखिए, अब तक 2015 चल रहा है, ये हम कह सकते हैं कि हम बहुत मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, परंतु भारत में फिर भी सर्वसाधारण घर के अंदर रोज ताजा पका हुआ खाना तो बनता है, होपफुली। मैंने देखा कितने घरों में वहां पर हफ्ते में एक बार खाना बनाते हैं, हफ्ते भर का, ऐसा नहीं कि फास्टिंग करते हैं, हफ्ते भर का बना के फ्रिज में रख देते। मैं जब 2005 में यूएस गया था, यूएसए, वहां जब गया था तो उधर एक फैमिली, उनकी वाइफ घर पर नहीं थी, वो इंडिया आई हुई थी, तो हस्बैंड अकेले थे। तो वीकेंड का प्रोग्राम था, सैटरडे संडे का सेमिनार था, तो मैं उनके घर पर ही रुका था। तो वो किसी दूसरे के डिवोटी के घर से प्रसाद अरेंज कर रहे थे। तो मैंने कहा, क्यों आप उनको क्यों तकलीफ दे रहे हैं, आपका इतना बड़ा घर है, किचन है, हम लोग यहीं कुकिंग कर लेंगे, मैं कर लूंगा, आपको नहीं आती। अच्छा, आप कुकिंग कर लेंगे? हाँ कर लेंगे, उसमें क्या है। तो फिर उन्होंने उनको मना कर दिया। अभी देखो वहां पर वो कितने ललायत रहते हैं कि एक बार भी नहीं कहा, प्रभु आप कैसे कुकिंग करेंगे, वो इंडिया में रहता तो इंडिया में मैं अगर किसी के घर पे जाकर कहूं कि मैं कुकिंग करूं, आप कैसे, नहीं नहीं आप बैठे वहां पे, अच्छा आप कर लेंगे, अच्छा ठीक है, वो फोन पे बोल दिया, जरूरत नहीं प्रभु जी, हाँ हो जाएगा इधर हमारा, हाँ प्रभु जी तो क्या बनाएंगे आप, बोला आपको क्या चाहिए, प्रभु जी सब कुछ मिलता है इधर, वो इंडिया वाली खिचड़ी नहीं मिलती, हाँ खिचड़ी खिचड़ी, हाँ आती, हाँ खिचड़ी आती। तो अब देखिए, हम दोनों ही थे घर पर, ये भक्त ने वो शॉपिंग कर कर लाए और मुझे उन्होंने कहा कि प्रभु जी ऐसा कीजिए, आप जो दो लोगों का सब प्रपोर्शन निकाले ना, दाल चावल और सब, आप आठ लोगों का बना लीजिए। मैंने कहा और भी कोई आ रहे हैं? नहीं नहीं, क्या है आप तो संडे को चले जाएंगे, फिर अगले संडे तक, तो मैंने कहा अगले संडे तक, हाँ प्रभु जी इधर तो यही कल्चर यही है, हम लोग बना लेते हैं सैटरडे संडे पे, वो छुट्टी का दिन रहता है उसमें बना लेते हैं, उसको डीप फ्रीज में रख देते हैं। एक घर में मुझे याद है, वहीं पर तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे गए सुबह सुबह, और उन्होंने मुझे कहा कि प्रभु जी अभी हम तो काम पर जा रहे हैं, आपका प्रसाद हमने बना के फ्रिज में रख दिया, आप उसको कर लेना माइक्रोवेव में घर। मैंने कहा आपको बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही बना लेता था। नहीं नहीं प्रभु आप, तो बना के चला गया। तो फिर वह एक बजे वो किचन में गया, तो वो फ्रिज, तो उधर के फ्रिज इतने बड़े बड़े होते हैं कि आप अंदर पूरा आपका साम्राज्य जमा लो, वो अलमारी जैसे जैसे बड़े बड़े। तो फ्रिज खोला मैंने, तो डब्बे पे डब्बे, डब्बे पे डब्बे, ऐसे डब्बे, एक पे दाल सब्जी ये सब लिखा हुआ है। तो मैंने वो डब्बा खोला तो वो दाल के ऊपर बर्फ की परत इतनी बड़ी, वो सब्जी के ऊपर बर्फ। तो मैंने फोन कर कर उनको पूछा कि प्रभु जी ये सब्जी बर्फ की है कि क्या, मतलब नहीं प्रभु जी वो लेफ्ट वाला आपका नहीं है, वो हमारा है, आपका राइट वाला है, जो कल आपके लिए जो कल बनाया है वो राइट साइड में रखा हुआ है, वो लेफ्ट वाला हमारा है। बोला आपका मतलब, नहीं नहीं वो हमारा पिछले हफ्ते का है, वो हमारा पिछले हफ्ते का। और मैं इंडिया में आया और मैंने देखा, कितनी बार हम ये दृश्य देखते हैं, ये जो फ्लाईओवर्स होते हैं, फ्लाईओवर के नीचे जो झुग्गी झोपड़ी के, हाँ जो खाना बदोश टाइप, वो लोग, वो भी चूल्हा लगा लेते हैं और उनका वो तवा और उसके ऊपर फ्रेश भाकरी जो भी रोटी वोटी उधर वो भी वो बना रहे। तो युधिष्ठिर महाराज जी जो बोले हैं बहुत सोच समझ के बोले हैं, है ना। वो पत्नी पति से पूछती है कि कहां वीकेंड पे कहां ले जाओगे, ऐसी जगह ले जाओ पहले कभी नहीं गए। किचन के वो बोलते हैं किचन में चले, पति कहते पहले कभी नहीं गए वहां पे। मुझे तो एक डिवोटी बताया कि आजकल बंबई में रिश्तों में वो जो लड़की का पिता है वो लड़के से पूछता है कि मेरी बेटी को हफ्ते में कितनी बार बाहर होटल में खिलाएगा। तो उसे लगा कि शायद होटल में नहीं खिलाना चाहिए। वह नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, घर पे ही खाएंगे। नहीं ए, घर पे वो क्या नौकरानी बन के जा रही है, हफ्ते में 3 बार उसको बाहर ले जाना है, साइन कर फिर शादी होगी। तो ये जो होटलिंग का कल्चर जो है, और फिर हो क्या रहा है कि कितने हमारे जो ऐसे डिवोटीज हैं जो होटल लाइन में हैं वो आके फिर अंदर की बात बताते हैं कि बाहर से वो एकदम ऐसा लगता है कि एकदम आपके ही सत्कार के लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर रखा है। और वहां पर लोग जाके बैठते हैं एकदम रुमाल उमाल लगा के, कई होटल में तो वो रुमाल भी वो खुद ही लगाता है, वो क्या बोलते हैं उसको वेटर, यहाँ पे लगाएगा यहाँ पे लगाएगा, ऐसे लगता है बाल काट रहा भी यहाँ पे लगाएगा। नाई की दुकान में लगाते हैं ना इधर। परंतु वो जो उधर किचन में, अभी वो एक अलग ही टॉपिक है, वो अगर हम शुरू कर दें तो बहुत से होटल के धंधे बंद हो जाएंगे यहाँ पे, कि जो गंदगी अंदर होती है। एक मेरे को हाल ही में किसी ने वीडियो भेजा KFC, ये KFC जो इतना फैल रहा है इंडिया में, KFC, तो उसका वीडियो भेजा कि कहीं साउथ में KFC के वो चिकन के अंदर कीड़े लाइव वर्म्स, पता लगा कि 5 महीने पुराना वो मीट सड़ रहा है, उसको फ्रीज में सड़ा सड़ा के उसको फ्राई करके दे रहे हैं। तो ये सब तो ब्रांडेड फूड चेन्स हैं, ये सब ब्रांडेड फूड चेन्स। अब देखो, हमारे कल 2 दिन पहले मैं हमारे अजय सोनार प्रभु के घर गया था, तो बता रहे थे कि एक कुत्ता आया करता था उनके घर पे पहले, और पहले उस कुत्ते को वो थोड़ा नॉनवेज सर्व कर देते थे, वो नॉनवेज खा के चला जाता था। लेकिन जब से वो भक्त बन गए वो सब घर पे छोड़ दिया उन्होंने, और वो कुत्ते को वेजिटेरियन फूड देने लगे प्रसाद। और वो कुत्ता पड़ोसी के घर में भी जाया करता था, जो पड़ोसी भी नॉनवेज दिया करता था उस कुत्ते को, वो कुत्ता पड़ोसी का नॉनवेज खाना बंद कर दिया। सोचो, हम कुत्ते के लिए हरी बोल बोल रहे हैं, कुत्ता सुधर गया। और पड़ोसी आके इनको कहता है कि अरे वो जब से आपके घर पे वो वेजिटेरियन प्रसाद खा रहा है वो हमारे घर का नॉनवेज छूता तक नहीं है। तो सोचने की बात है कि अरे कुत्ता नहीं छू रहा है और आप क्या कर रहे हो, तो क्या हो गया फिर, आप किससे बदतर हो गए। तो ये जो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, वन हु गेट्स होम कुक्ड फूड एवरी डे, इट्स एन ऑपुलेंस इन कलयुग, ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य बनते जा रहा है।
हरे कृष्ण, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, MH15BD6448 मारुति किसी की कार है, MH15BD6448 तो ये कार ब्लॉक कर दी है रास्ते को, तो हमारे एक डॉक्टर साहब को अर्जेंट पेशेंट देखने के लिए जाना है, तो अपनी कार निकल नहीं पा रहे, तो जिनकी भी ये मारुति है 15BD6448 कृपया उसको आप मूव कीजिए ताकि डॉक्टर साहब जा सके। हरे कृष्ण।
अच्छा, दूसरा कारण युधिष्ठिर महाराज दे रहे, वन हु डजंट हैव टू ट्रैवल फॉर वर्क, हु इज अ हैप्पी ह्यूमन बीइंग, जिसको अपना जो भी आमदनी कमाने के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़े। अगेन इट्स एन ओपिनियन, श्रील प्रभुपाद खुद देखे अमेरिका में, पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स काम करने के। जैसे कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार जब इंट्रोड्यूस हुई तो इसमें जो वर्क कल्चर कैसे बदला, कि पहले क्या हुआ करता था वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, कि अभी जैसे कोई किसान है तो उसकी खेती इधर ही है, बस वो रह रहा है यहां पर है, बाहर जाके खेती कर रहा है, वापस घर पे। अभी जब कार आ गई तो अब कार को ले जाना पड़ रहा है, मतलब जहां पर भी वर्क प्लेस है वहां पे पार्किंग नहीं मिलती, क्योंकि इतनी सारी कार में लोग जाएंगे, कार में जाएंगे तो फिर वहां पे पार्किंग नहीं मिलेगी, तो इसलिए फिर वहां पे से रेसिडेंशियल जो एरिया है वो कम करते गए, तो फिर लोग अपने आप उनका घर उनके वर्क प्लेस से दूर होता गया। तो जानबूझ के इसलिए आप जाओ बंबई में जाओ, कितनी भी आलीशान आपकी गाड़ी है, एक बोर्ड लगा देते नो पार्किंग। हाँ, वहां पर अगर आपने पार्क कर भी दी, आधे घंटे में वो टो करके ले जाएंगे, फिर चाहे आपकी वो BMW हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, कोई भी हो, वो ले जाएंगे वहां पे, फिर वहां पे भागते रहो आप उसके पीछे। तो पार्किंग सबसे ज्यादा टेंशन पार्किंग का है, तो उन्होंने ये सब क्रिएट क्यों किया है, ताकि डिस्टेंस बढ़ता रहे उनके रेसिडेंशियल एरिया में और वर्क प्लेस में। डिस्टेंस बढ़ेगा तो कार यूज करनी पड़ेगी, कार यूज करनी पड़ेगी तो फिर पेट्रोल डीजल उनका धंधा, उनका मुनाफा होता रहेगा पेट्रोलियम इंडस्ट्री का। एवरीथिंग इज कॉन्फ्लिक्टिंग, दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग, दे आर ऑल कॉन्फ्लिक्टिंग। तो इसलिए ये जो दूसरा कारण युधिष्ठिर महाराज दे रहे हैं, वन हु डजंट हैव टू ट्रैवल फॉर वर्क, और तीसरा कारण वन हु इज फ्री फ्रॉम लोन्स। आपको लग रहा होगा युधिष्ठिर महाराज कॉर्पोरेट सेमिनार दे रहे हैं, ऋण मुक्त जीवन, मतलब मैं एक व्यक्ति से कुछ साल पहले चर्चा कर रहा था बंबई में, वो व्यक्ति इतना खुश नजर आ रहा था, मैंने कहा अचानक आप इतना खुश कैसे हैं, मेरे सारे EMI लोन्स क्लियर हो गए, मैं मुक्त हो गया प्रभु। आजकल मुक्ति के लक्षण ये है, किसी को बोलो जीवन मुक्त कौन है, जीवन मुक्त से उच्चते, ये जिसके लोन सारे क्लियर हो गए जीवन मुक्त हो गया हो। जस्ट इमेजिन हाउ प्रैक्टिकल युधिष्ठिर महाराज वॉज इन ऑर्डर टू गिव दीज थ्री रीजंस, ये तीन कारण। तो आपको हम बंबई का जीवन एक वीडियो के द्वारा दिखाना चाहेंगे। हाँ, फास्ट है ना, उधर सब फास्ट चाहिए उनको, तो ये शॉर्ट फिल्म का नाम है डोंबिवली फास्ट। और लोग फक्र करते हैं, बंबई में रहते हैं, हाँ बोलते हैं बंबई में हमने 25 साल गुजार दिए, किसमें, डोंबिवली फास्ट।
दबा उठ रे
आलिया आलिया आइए टाटा ये तो टाटा
अरे उठ
जाऊन जाऊन खायचं चल नाही येतो बाळा बाय
जीवन जी रहा है बीच में जाके इनको पूछो जीवन का उद्देश्य क्या है क्या है डोंट बी विली फास्ट फास्ट ट्रेन पकड़नी है जाने के लिए काम पे वापस से फास्ट ट्रेन पकड़नी है वापस आने के वो अगर ट्रेन मिल गई उसमें जगह मिल गई जीवन का लक्ष्य परिपूर्ण तरीके से प्राप्त हो गया सोचिए कि कोई अगर दिन रात ये जीवन जी रहा है हर दिन हर हफ्ते हर महीने पूरे साल भर कितने साल इसलिए तो कई वो जो वहां पे रहते हैं मैं जब वहां पर था तो कोई एकदम ऐसे छाती तान के कहते थे फक्र से मैं 25 साल से लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहा हूं 25 साल से कोई है वही ट्रेन वही सीट ये 25 साल से सड़ रहा है मतलब उसमें उसको फक्र है तो इसके बीच में सोचो कि भगवद गीता का ज्ञान ये कह देना कि हम शरीर ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो फिर ये दौड़ धूप क्या चल रही है मेरी। देखो वहीं से मतलब ताश का महल बनाते ना, हम लोग ने बनाया होगा बचपन में ताश के पत्तों का महल, तो इतना बड़ा महल कोई बना लिया ताश के पत्तों का, और भगवत गीता क्या है, नीचे का पत्ता ही निकाल दिया, दर 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 दर। तो एक पत्ता क्या है, हम शरीर नहीं आत्मा है, वही भगवान को खबर, एक पत्ता निकालने की जरूरत है। और इतना बड़ा साम्राज्य जो हमने शरीर के स्तर पर खड़ा कर रखा, वो सारा ताश का महल जो है नीचे। तो यदि हम इसको कंपेयर करें वैदिक वर्सेस मॉडर्न कल्चरल कॉन्सेप्ट्स, तो एक एक मुद्दे लेंगे, इस पर गौर करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है कि टेम्पररी वर्सेस यूजलेस। अब देखो आजकल कितने सारे ऐसे व्यवसाय हैं, कितने सारे ऐसे कार्य हैं जिनको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, परंतु वैदिक कल्चर के अनुसार वो यूजलेस है। परंतु वैदिक कल्चर जब जिसको टेम्पररी कहता है, उसका अर्थ ये नहीं कि वो यूजलेस है। जैसे कि मटका, कुम्हार जब मटका बनाता है तो अब वो मटका टेम्पररी है, बट दैट डजंट मीन दैट इट इज यूजलेस। और मॉडर्न कल्चर कॉन्सेप्ट क्या है, एनीथिंग विच इज यूजलेस ट्राई टू मेक इट परमानेंट। जैसे मैं एक डिवोटी से बात कर रहा था मैनचेस्टर में, तो परफ्यूम कंपनी में काम करते हैं, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। तो मैंने पूछा कि क्या आप लोग का मतलब टर्नओवर क्या है, कितने एम्प्लॉयज हैं, तो उन्होंने कहा प्रभु जी आप जानते नहीं, पूरे वर्ल्ड मार्केट में जब भी रिसेशन हुआ है हमारी परफ्यूम फैक्ट्री कभी बंद नहीं हुई, उसके सेल्स कभी कम नहीं हुए, हमारे बिजनेस में कभी रिसेशन आज तक नहीं हुआ। अब आप इसका अगर एंड यूजर कौन है, मैंने पूछा कि क्या मतलब, बोले सबसे ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में और इंडिया में भी परफ्यूम जो इतने बिकते हैं। तो वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा विंटर सीजन में परफ्यूम बिकते हैं हमारे, आपने कैलकुलेशन लगा लिया होगा, क्योंकि कोई नहाता नहीं, तो अगर नहाओगे नहीं हफ्तों तक महीनों तक नहाओगे नहीं तो फिर फाइनली बदबू आएगी, और उस बदबू को छिपाने के लिए वो सुबह सुबह परफ्यूम डिओड्रेंट ये वो मार मोर के जाते हैं दिन भर वो बस। तो मेरे को कहे, उन्होंने मेरे को एक परफ्यूम की बोतल दिखाई, बोले ये परफ्यूम की बोतल पता है कितने की है, 50,000 रुपए, इतनी सी बोतल 50,000 रुपए। बोला किसी इंडियन को दोगे वो तो 50 साल तक देखता ही रहेगा उसको आगे से पीछे से खोलने से, बेटे को दे बेटा खोलना मत। पचास हजार रुपए की एक बॉटल, मतलब कितने लोग लगे हुए हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री और इतना दिमाग लगा रहे हैं, क्या बनाने के लिए, आपकी बदबू छुपाने के लिए। वैदिक कल्चर क्या कहता है, नहाओ, ना नहाना ये मॉडर्न चीज है, पिछड़ी हुई चीज है नहाना, मॉडर्न क्या है परफ्यूम लगाना। So something which is useless is made permanent. उसके ऊपर इतना बड़ा धंधा चल रहा है, इकोनॉमी चल रही है, लेकिन उसका एंड क्या यूटिलिटी है जीवन के लिए, उद्देश्य जीवन उद्देश्य सिद्ध करने के लिए उसका क्या यूटिलिटी है वो मत पूछो। तो जैसे कि आजकल ये जो ट्विटर फेसबुकिंग ये सब का जो क्रेज है, तो इसके ऊपर आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि ये जो ट्विटर क्रेज क्या है। ट्वीट ट्वीट करते रहते ना आप, सुने नहीं होंगे ज्यादा, उसको बोलते हैं आई ट्वीटेड। हाँ, और फेसबुकिंग बंद कर लो।
हेलो,
हाँ जीतू।
हाँ पापा नमस्ते।
सो रहा था क्या?
नहीं नहीं योगा कर रहा हूँ पापा, बोलो।
ए जीतू एक बात बता यार, ये ट्विटर क्या चीज होती है?
क्या
ट्विटर? ट्विटर वो जो न्यूज में नहीं आता नीचे ट्विटर पे लिखो, आनंद गोस्वामी बोलते रहता है ट्विटर पे भेजो।
हाँ ट्विटर कुछ भी पापा, एक वेबसाइट होती है, वो ईमेल दिखाया था ना आपको।
हाँ हाँ तो वैसा ही है ट्विटर पे, बस आप
कुछ भी लिखो और लोग अपने आप देख लेंगे। बस वही है कि 140 कैरेक्टर्स लिमिट है इस पे।
140 बस? ज्यादा लिखना हो तो?
ज्यादा नहीं लिख सकते, 140 कैरेक्टर्स अलाउड है इस पे।
कमाल है यार, तो गूगल में काम करता है ना, बात कर ले स्टाफ को तो कंसिडर करेंगे वो, अपने लिए 300-400 कैरेक्टर करवा ले।
अरे बाबा ऐसा थोड़ी होता है, ट्विटर है उसके अपने रूल्स है।
कमाल कर रहे, अगर मुझे ज्यादा लिखने का मन हो तो फिर मैं ईमेल पे लिख लूंगा ना, ट्विटर पे क्यों लिखूंगा मैं?
ईमेल बाबा ट्विटर आजकल ज्यादा चल रहा है, उसपे कम वर्ड्स में ज्यादा चीजें लिखते हो आप।
तो क्या लिखो फिर मैं?
क्या लिखोगे क्या मतलब है? जो पसंद आए पापा लिखो आप।
आजादी पे पोएम लिख दो।
अरे पापा कुछ जनरल चीजें लिखो ना, जैसे आप कहीं गए घूमने, क्या खाया, वो सब किससे मिले, ये सब लिखो।
उसे कौन पढ़ेगा यार?
अरे पापा सबको ही पढ़ेगा जो भी ट्विटर पे है।
अरे मैं कहाँ गया था, किससे मिला, उससे किसी को क्या मिलेगा?
अरे मिलेगा क्या पापा, ऐसा करते हैं लोग। और अब लिखना नहीं है तो आप फोटो वोटो भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप कहीं खाना खाने गए बाहर किसी के साथ, तो फोटो खींच के ट्विटर पे शेयर कर दी।
फोटो वोटो खींचते हुए खाना ठंडा नहीं हो जाएगा?
ओ हो पापा लोग करते हैं ऐसा। अच्छा ठीक है, मान लो मैं ट्विटर पे हूँ, ठीक है, और आज आप मंदिर गए पूजा करने के लिए।
हाँ, तो आप वो ट्विटर पे ट्वीट,
आप वो ट्विटर पे पोस्ट कर दीजिए कि वेंट टू लक्ष्मी नारायण मंदिर फॉर आरती, तो वो मुझे पता चल जाएगा।
वो खोते होते देखो पता है मैं गुरुवार को टेंपल जाता हूँ।
तो पापा सिर्फ मुझे पता है ना, बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा?
अरे बाकी लोगों को क्यों बताऊं कि मैं गुरुवार को कहाँ जाता हूँ, टेंपल जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ?
अच्छा फिर मत करो, मत लिखो फिर ट्विटर पे आप।
तो ट्विटर का फायदा क्या हुआ फिर?
फायदा क्या? अच्छा ठीक है, मान लो जैसे आपको कोई बात है जो सब बहुत सारे लोगों को बतानी है, जैसे नेहू का रिश्ता हुआ अभी, तो वो आप ट्विटर पे लिख दीजिए, सब लोगों को पता चल जाएगा।
अगर ट्विटर पे लिख दो, फोन ना करो मैं।
उसकी जरूरत ही नहीं है ना, फिर जितने भी आपके ट्विटर पे दोस्त रिश्तेदार है सबको पता चल जाएगा।
झूठे मारो तेरे को मैं, पूरी बिरादरी में नाक कट जाएगी, लोग बोलेंगे भाटिया साहब ने 50 से बचाने के लिए बेटी की शादी में फोन तक नहीं किया। बकवास है ट्विटर।
अरे पापा बकवास ऐसे थोड़ी ना है, सब लोग हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, शाहरुख खान आमिर खान बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं इस पे।
अच्छा जी, ओ वहीदा रहमान जी हैं उधर?
वहीदा रहमान तो नहीं है शायद,
जया भादुरी जी,
अमिताभ बच्चन है पुराने लोगों में।
अच्छा जी, तो क्या करते हैं अमिताभ बच्चन जी वहां पे?
करेगा क्या, वही क्या खाया, किससे मिले, किससे मीटिंग हुई, यही सब करते हैं लोग, शेयर कर देते हैं।
एक्टिंग नहीं करते वहां पे?
अरे पापा ट्विटर पे करेंगे क्या एक्टिंग, फिल्मों में करेंगे एक्टिंग।
यार वो अमिताभ बच्चन है, मैंने उनकी एक्टिंग देखनी है, वो किससे मिले क्या किया उससे मेरा क्या लेने देना।
अरे आपको एक्टिंग ही देखनी है तो फिर फिल्मों में देखो, या फिर ऑनलाइन ही देखना है तो यूट्यूब पे जाके देखो ना आप।
अच्छा अच्छा, ये यूट्यूब क्या चीज होती है यार?
हाँ पापा वो वीडियोस पसंद आया तो लेफ्ट लेफ्ट में एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दो।
उससे क्या होगा?
होगा क्या भाई, जब नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड होगा तो मिल जाएगा आपको, अपने आप पता चल जाएगा।
अरे एक बात बता, अगर वीडियो अच्छा लग जाए फिर क्या करना होगा?
कमेंट कर दो। और क्या
वो कैसे करना है?
वही नीचे है कमेंट सेक्शन होगा, हाँ तो उस पर जाके लिख दो। और हाँ यदि पसंद आया तो एक लाइक, एक अंगूठे का निशान दिख रहा है क्या? हाँ तो उस पर क्लिक कर दो तो लाइक भी हो जाएगा।
अगर वीडियो को बहुत अच्छा लगे तो दो बार अंगूठे पे लाइक कर दूं?
एक घर में काम वाली बाई 3 दिन आई नहीं, तो वो घर की मालकिन उसको कहती है, शांता भाई 3 दिन से गायब है, बताकर तो जाती। तो शांता भाई कहती है, मेम साहब आप फेसबुक पर नहीं है लगता है, मैंने मेरा स्टेटस अपडेट किया था। तो ये पूछती क्या स्टेटस अपडेट किया? मैंने मेरा स्टेटस अपडेट किया था, गोइंग टू गांव फॉर 3 डेज। हाँ साहब ने कमेंट भी किया था, मिस यू। फेसबुक के फायदे। ये जो पहला मुद्दा है, टेम्पररी वर्सेस यूजलेस। अब देखिए कि हमारी वैदिक संस्कृति में जो हम कह रहे हैं कि दैट कल्चर विच इज कॉम्प्लीमेंटिंग, हर एक चाहे वो व्यवसाय आप लो, चाहे वो किसी की उम्र लो, हाउ यू नो चिल्ड्रन आर कॉम्प्लीमेंटिंग दी ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग चिल्ड्रन, जनरेशन गैप, ये कोई मुद्दा ही नहीं था वैदिक संस्कृति में। लेकिन आज मॉडर्न कल्चर में क्या है कि यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, और फिर उसके वजह से सारे पूरे आप देखो पृथ्वी पर ये मॉडर्न कल्चर को फॉलो करने के वजह से ये जो यूजलेसनेस बढ़ती जा रही है और उसको इतना सीरियस लोग ले रहे हैं कि उसको अगर किसी जैसे कहते हैं ना कि इफ यू वांट अ लाई टू बी अंडरस्टूड एज ट्रूथ स्पीक इट लाउड इनफ एंड लॉन्ग इनफ, वो है कि उसको विज्ञापित कर दो, इतना मार्केट कर दो उस झूठ को, उस यूजलेस चीज को, कि फिर ऐसा लगेगा कि भाई इसके बिना जीवन ही नहीं। जैसे हमारे ट्विटर। अच्छा अनदर थिंग, ये एक हमारे भक्त के साथ ये हुआ था कि उनको एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज देयर इन योर वैदिक कल्चर दिस चाइल्ड मैरिज। तो उन्होंने ये क्वेश्चन उनको पूछा, विच इज मोर बारबारिक, चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड प्रेगनेंसी। मैं अब वहां पर जब था लंदन में तो वहां पर एक इंटरव्यू वो मेरे को बता रहे थे, एक भक्त टीवी पर बीबीसी पर, और इंटरव्यू था एक 13 साल की लड़की जिसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। कितने साल की लड़की? 13 साल की लड़की। अब उसको लड़की बोलोगे या मां बोलोगे? सो विच इज मोर बारबारिक? ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग लाइक चाइल्ड मैरिज, जो वैदिक संस्कृति के अनुसार जब वो रिश्ता प्रस्थापित होता है तो वो लोग साथ में रहते नहीं। आजकल क्या है कि शादी से पहले साथ में रह रहे हैं, हाँ, लिव इन रिलेशनशिप। शादी से पहले 10 साल एक साथ रह रहे हैं, फिर डिसाइड करते हैं, 3-4 बच्चे भी हो गए, फिर डिसाइड करते हैं अब शायद बन रही है हमारी शादी का, फिर शादी करेंगे और 1 महीने बाद डिवोर्स। तो यहां पर आप देखो कि वो जो एक कॉन्सेप्ट जो वैदिक संस्कृति में जहां पर बचपन से एक रिस्पेक्ट पैदा किया जाता था दोनों के बीच में, और फिर जब वो मैरिजेबल एज पर आते थे तब जाकर वो एक साथ शादी के संबंध में स्थापित होकर रहते थे फिर, और तब तक एक दूसरे के अंदर वो अफेक्शन रिस्पेक्ट जागृत किया जाता, तो वो उसके पीछे साइंस था। तो उस साइंस को निकालकर अभी किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, ओ दिस आर ऑल यू नो ऑर्थोडॉक्स प्रिमिटिव यू नो कल्चर्स विच टॉक्स अबाउट दैट। और फिर जो ये है, मतलब उसको बीबीसी में किस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि देखो वो 13 साल की लड़की कितना रिस्पॉन्सिबल है, हाँ कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। वो पूरा डॉक्यूमेंट्री इतना पॉजिटिव था कि वो 13 साल की लड़की कितनी रिस्पॉन्सिबल है कि वो जुड़वे बच्चे को पैदा कर कर, हाँ ये मानते हैं कि कम से कम पैदा तो किया, वहां पर तो वो हाल है कि सबसे पहले अबॉर्शन। तो चाइल्ड प्रेगनेंसी विच इज बिकमिंग सो रैम्पेंट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड कमिंग टू इंडिया ऑल्सो। तो इसके बाद जैसे कि मैं शायद पिछले साल दिखा रहा था, ये मेरे को हाल ही में इस विजिट में कुछ वहां के बच्चे एक प्रश्न पूछ रहे थे कि ये जो आप बोल रहे हो कि ना अपना जो इंडियन कल्चर है, वैदिक कल्चर है, ये इतना रिच है, ये वो, तो वो कह रहे थे कि अलग अलग चीजें नुक्स निकाल रहे थे इंडिया में। तो मैंने उनको मेरा एक प्रेजेंटेशन दिखाया जो पिछले साल मैंने दिखाया था एक जगह, उसमें मैंने कहा कि ये आपकी जो कंट्री है यूके यूनाइटेड किंगडम, यहां पर ही एक 40 वर्षीय महिला डिवोर्सी, 40 वर्षीय, उसने पब्लिकली चर्च में शादी करी, 300 गेस्ट उस शादी को अटेंड किए, बाकायदा वो जो सफेद गाउन पहनकर, ये हस्बैंड कौन था, कुत्ता। ये सही न्यूज बता रहा हूं मैं आप, इस 40 वर्षीय ब्रिटिश महिला ने कुत्ते के साथ शादी करी और ये लोग वहां पर जो बच्चे हैं ये कहते हैं कि ब्रिटिश कल्चर, हमारा ब्रिटिश कल्चर। सोचो ये भारतीय बच्चे बोल रहा हूं मैं, वो नहीं वहां के ब्रिटिश बच्चे नहीं, भारतीय बच्चे, हमारा ब्रिटिश कल्चर और ये जो आपके भारत में हो रहा है सब कुछ वो क्या। तो मैंने कहा कम से कम मैंने ये तो भारत में नहीं सुना कि कुत्तों से शादी की जा रही और वो भी पब्लिकली, वो उसको एडवर्टाइज कर रही है, उसके वेडिंग एल्बम बन रहे हैं उसके। तो उसको जब मैंने दिखाया तो उसको ये सरप्राइजिंग भी नहीं लगा, सोचो ये मेरे को इतना सरप्राइजिंग लगा कि उसको सरप्राइजिंग ही नहीं लग रहा है कि आजकल कौन किससे शादी कर रहा है। हाँ जैसे बोलते हैं ना, पहले तो एटलीस्ट स्त्री पुरुष शादी किया करते थे, अच्छा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस, एग्रीकल्चर वर्सेस फैक्ट्री कल्चर, कि जो कृषि प्रधान हमारा देश, हमारे इस कृषि प्रधान देश को धीरे धीरे जो भी हमारे पहले के जो प्रधानमंत्री हुए उन्होंने जो कहा, प्रथम प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हमारे जो आधुनिक मंदिर होंगे वो क्या होंगे, ये सारे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, ये हमारे आधुनिक मंदिर होंगे और उसमें से जो भी बनेगा वो उत्पादन जो होगा वो हमारे भगवान है, वो हमारा भरण पोषण करेंगे। तो देखिए अब धीरे धीरे वहां पर मैं जब ट्रैवल करता हूं तो विदेश में वो लोग फिर से ये जो कल्चर है अपना एग्रेरियन कल्चर जिसको बोलते हैं या एग्रीकल्चर, उसमें भी कल्चर वर्ड आता है एग्रीकल्चर, कि कृषि प्रधान जो हमारा देश है। तो अभी यूके में मैंने देखा कि वहां पर हर चीज बाहर से आती, सब्जियां बाहर से आती हैं, वहां पर दूध वगैरह जो भी कुछ वो सब कुछ उनका उत्पादन है ही नहीं, सब वहां बाहर से आता, अन्न बाहर से आता है सब कुछ। और यदि वो बाहर का सप्लाई बंद हो जाए तो फिर उनके पास कुछ खाने के लिए है नहीं। जैसे बंबई शहर आपने देखा, दौड़ धूप लगी हुई है, काम कर रहे हैं इतना वहां पर बंबई शहर में जाकर, और वहां पर बंबई शहर में जाकर वो पैदा क्या कर रहे हैं, बस फैक्ट्री में जाकर नट बोल्ट इत्यादि। फाइनली घर पर आकर जो भोजन खा रहे हैं वो भोजन आ कहां से रहा है, उसी गांव से आ रहा है जिस गांव को वो छोड़कर बंबई आए। पहले भी मैंने ये किस्सा बताया है, मैं पंचवटी से आ रहा था तो एक ग्रुप, एक लेडीज का ग्रुप, तो उनकी जो वो हेड थी उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा, मैंने आपका गीता कोर्स अटेंड किया चौपाटी में इतने साल पहले, आप हमारे ग्रुप को कुछ बताना चाहोगे? तो मैंने कहा कि क्या ग्रुप है, क्या करते हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा कि हम लोग देहात में जाकर जो बच्चे हैं ट्राइबल बच्चे, उन ट्राइबल बच्चों को हम एजुकेशन दे। मैंने पूछा किस प्रकार का एजुकेशन देते हैं आप? तो उन्होंने बताया जो अपना मॉडर्न एजुकेशन है वो मॉडर्न एजुकेशन दे। तो मैंने उनसे कहा कि देखो आप वहां पर जाके उनको ये मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हो और वो पूरे प्रकार से तो आप देते नहीं हो उनको, तो थोड़ा बहुत एजुकेशन लेने के बाद फिर वो जो उनके जो खानदानी कार्य हैं उसको छोड़कर वो लोग आते हैं, क्योंकि हम थोड़ा एजुकेटेड हो गए हैं अभी, वो बच्चे सोचते हैं हा? जो अभी 12वीं पास हो गए हैं या बी कॉम पास हो गए हैं, तो फिर वो लोग अपना खानदानी काम छोड़कर वो लोग क्या करते हैं, शहर में आते हैं और शहर में किसी मिल में काम करेंगे या क्लर्क बन जाएंगे या किसी रेस्टोरेंट में वेटर बन जाएंगे वहां पर, और करेंगे क्या, वो ही बस कुछ हजार की नौकरी और नो मूवेबली फास्ट, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहना, गंदगी में रहना, पोल्यूशन में रहना, और उसके बाद में जो वो रोज उनके सस्टेनेंस के लिए जो खाना अन्न सब्जियां वगैरह वो सब आएगी कहां से, उनके ही गांव से आ रही है जिस गांव को छोड़ के आए और जिस खेती को छोड़ के आए। वहां पर वो केमिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं प्रीचिंग करता था तो कितने विद्यार्थी, उनको शर्म आती थी बोलने के लिए कि मैं किसान का बेटा हूं। तो मैंने कहा शर्म क्यों आ रही है तुमको ये बोलने के लिए कि तुम किसान के बेटे हो? तो देखिए स्थिति ये हो गई है आजकल। हां हम जानते हैं कि हमको सुधार लाना है। अभी इसी विजिट में एक ऐसा किस्सा हुआ हमारे साथ, एक हाउस प्रोग्राम में मैं था तो वहां पर सब अपने इंडियंस, लेकिन अभी वहां पे सेटल्ड हैं वो लोग, यूके में सेटल्ड हैं। तो उस हाउस प्रोग्राम में बहुत से प्रश्न, क्वेश्चन आंसर्स काफी देर तक चला। तो एक क्वेश्चन एक व्यक्ति ने पूछा मुझसे, वो कहता है कि देखो आप ये जो वैदिक संस्कृति के बारे में बोल रहे हो और आप कह रहे हो कि हमारा भारत देश जो है वहां पर इतने अवतार हुए, वैदिक संस्कृति, इतने ग्रंथ हमारे भगवद गीता इत्यादि, लेकिन हम लोग जो यहां पर बैठे भारत के विषय में सुनते हैं तो हम तो यही सुन रहे हैं कि भारत डूब रहा है। इस टोन में उसने कहा, हम तो यही देख रहे हैं कि भारत डूब रहा है, भुखमरी है, गंदगी है, गर्मी है, करप्शन है, डूब रहा है, क्यों हम जाएं ऐसे भारत में, सब देख रहे हैं कि सब जगह पर ये सब हो रहा है। तो मैंने उनको कहा मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए इस कहानी को, छोटी सी कहानी है। एक छोटा सा बच्चा समंदर की ओर घूम रहा था आसपास, और फिर वो समंदर में उसने प्रवेश किया और जैसे उसने अंदर प्रवेश किया समंदर की लहरें उसको चपेट में ली और डूबने लगा। उसको तैरना नहीं आता था, समंदर में वो डूब रहा है। कुछ लोग जो वहां पर टहल रहे थे तो एक व्यक्ति ने उसे डूबते हुए कहा, अरे जब तुमको तैरना ही नहीं आता तो अंदर गया क्यों? यहां खड़ा चिल्ला रहा है, अरे जब तुमको तैरना ही नहीं आता है तो तू गया क्यों? दूसरा व्यक्ति वो भी देखा, वो इसके बगल में आके खड़ा हो गया, उसने कहा, अरे गलती इसकी नहीं है, गलती इसके माँ बाप की है, इसके माँ बाप ने इसको यहां पर अकेला क्यों छोड़ा, ये वो जाके वहां पर डूब रहा है। तीसरा व्यक्ति जुड़ गया, तीसरा व्यक्ति कहता है, ना 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 ना, अरे इसको अगर पानी में तैरने का ही शौक था तो ये कहीं स्विमिंग पूल में जाता, कहीं कोच के अंडर जाता, वहां पर उसके निगरानी में करता, ये कहां समंदर के अंदर। ऐसे तीन फिर चार, सब लोग आकर उसको कह रहे हैं। एक और व्यक्ति वो उस रास्ते से गुजर रहा था, वो समुद्र के तट पर भी नहीं था, उसने उस व्यक्ति को देखा, उसने उस बच्चे को देखा डूबते हुए, वो सीधा कूदा समंदर के अंदर और उस डूबते हुए बालक को वो बचा कर लाया। तो मैंने इस व्यक्ति को कहा जो वहां यूके में मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा था, मैंने कहा कि इंडिया डूब रहा है, कम से कम मैं जाके उसको बचा तो रहा हूं, तुम तो खड़े यहां पर तट पर ये कह रहे हो। मैं भी मानता हूं इंडिया डूब रहा है, तुम इंडियन होके कर क्या रहे हो, खड़े होके बच्चे को अंदर नहीं जाना चाहिए था, अगर तैरना नहीं आ रहा है तो क्यों जा गया अंदर। हाँ, मां बाप की गलती है, हाँ सरकार की गलती है, वातावरण की गलती है, अरे समंदर की गलती है। तो थोड़ा मेरा भी उधर खून खौल गया, मैंने कहा कि यू सिंपली सिट हियर इन दिस कंट्री एंड यू सिंपली क्रिटिसाइज इंडिया, तुम्हारी परवरिश की किसने, तुमको ये एजुकेशन, जो भी तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, ये सब दिमाग वगैरह तुमको दिया किसने, और वहां बैठकर तुम इंडिया को गाली दे रहे हो कि इंडिया डूब रहा है। तो मैंने उनको कहा कि आओ, मैं भी इंडियन हूं, तुम अपने आप को अगर इंडियन कहते हो तो आओ और डूबते हुए इंडिया को कम से कम बचाने की कोशिश तो करो, अगर तैरना भी नहीं आता तो कम से कम कोशिश तो करो बचाने की। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि ये जो श्रील प्रभुपाद ने किया, श्रील प्रभुपाद लंदन में जाकर उन्होंने कह दिया, जब उनको पूछा गया व्हाई हैव यू कम टू लंदन, प्रभुपाद कहे, यू ब्रिटिशर्स, यू केम एंड यू स्टोल अवे एवरीथिंग फ्रॉम आवर कंट्री एक्सेप्ट आवर कल्चर, आई हैव कम टू गिव दैट। तो इसलिए ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, हालांकि और भी काफी पॉइंट्स हैं इसमें, हम हमारे अगले सिटिंग में इसको डिस्कस करेंगे और इलैबोरेटली, कि जो इंस्ट्रक्शंस हमारे वैदिक ग्रंथों में भगवान ने और भगवान के प्रतिनिधियों ने दिए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ उन्होंने एक वातावरण दिया है हमको, वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर उस वातावरण को क्रिएट करना, वो जिम्मेदारी भगवान ने हमारे ऊपर दी है, जो श्रील प्रभुपाद ने कर दिखाया कि हाँ वो प्रामाणिक प्रतिनिधि, इंस्ट्रक्शंस उन्होंने अपने जीवन में अपनाए और फिर उन्होंने उसका एक वातावरण, उसका एक नमूना प्रस्तुत कर दिया। इट इज पॉसिबल इवन नाउ, युधिष्ठिर महाराज अगर वो तीन कारण बोल सकते हैं हाउ टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, उन्होंने ये सब नहीं कहा कि तुम ब्रह्मानंद को प्राप्त करो या फिर तुम बहुत बड़े तप करो इत्यादि, तीन चीज उन्होंने क्या कही, घर का पका हुआ भोजन, काम जो व्यवसाय कर रहे हैं वो भी निकट होना चाहिए और ऋण मुक्त जीवन। सच प्रैक्टिकल टिप्स अवर आचार्यज हैव, दे हैव गिवन, एवरीथिंग इज देयर इन आवर स्क्रिप्चर्स, कम से कम हम उसको खोल के पढ़ें। तो इसलिए ये गीतामृत कार्यक्रम हम लोग जो इतने वर्षों से कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि गीता के अंदर एक श्लोक हम ले रहे हैं पिछले 16 बुधवारों से। सोचिए कि हमारे आचार्यों ने उसके अंदर कितना कुछ दे रखा है कि कम से कम हम पहचाने कि ये जो धरोहर हमको दी गई है उसका महत्व क्या है, उसको समझें, पहले पढ़ें, फिर समझें, फिर अपने जीवन में उतारें और फिर डूबते हुए भारत को बचाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंदी
हरे कृष्णा। कुछ अनाउंसमेंट इस प्रकार से है।